परिशिष्ट वन, कमोडोर पैरी का अभियान, कमोडोर पैरीज एक्सपेडिशन। कमोडोर मैथ्यू कैलब्रेथ पैरी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नौसेना पदाधिकारी थे। अमेरिका के पहले भापचलित युद्धपोत मिसिसिपी का नक्शा तैयार करने तथा उसके निर्माण का कार्य उन्हीं की देखरेख में हुआ था और मैक्सिको से युद्ध के दौरान वेराक्रूज पर कब्जा करने के लिए वे इसका प्रयोग ध्वजपोत के रूप में कर चुके थे। इनका नाम जापान के इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने ही 200 वर्षों की लंबी पृथकता के बाद जापान को पश्चिमी दुनिया से परिचित करवाया था। सन 1852 में ईस्ट इंडिया स्क्वाड्रन का भार इनको सौंपा गया, जिसके अंतर्गत इन्हें जापान और अमेरिका के बीच राजनयिक एवं व्यावसायिक संबंध कायम करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। राष्ट्रपति मिलर्ड फिलमोर के विहग प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण कारणों से इस अभियान को अनुमति दी थी। पहला, अमेरिका के व्यावसायिक एवं धार्मिक गुटों ने जापान के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अमेरिकी प्रशासन पर जबरदस्त दबाव डाल रखा था। दूसरा, दुर्घटनाग्रस्त जहाजों के मछुआरों के साथ हुए अवांछित व्यवहार के संबंध में अमेरिका में प्रकाशित हुई सनसनीखेज कहानियों ने वहां इस प्रकार के अभियान के लिए माहौल तैयार कर दिया था। जापान के द्वार खोलने के लिए सन 1830 से यहाँ वहाँ हो रहे अनगिनत असफल अमेरिकी प्रयासों में कमोडोर पैरी के नेतृत्व में किया गया यह प्रयास संभवतः सबसे महत्वपूर्ण था। यद्यपि आरंभ में कमोडोर पैरी को इसमें विशेष रुचि न थी, परंतु शीघ्र ही वे इस कार्य के प्रति अत्यधिक उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यह कार्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिकी सम्मान व्यवसाय तथा संस्कृति के प्रसार का एक महान एवं ऐतिहासिक अवसर था। वास्तव में इस अभियान पर जाने से पूर्व वे इस बात को अनुभव कर चुके थे कि उनके जहाज, जिन्हें जापान में काले जहाज ब्लैक शिप के नाम से जाना जाता था, विधर्मियों के लिए ईश्वर का संदेश द गॉस्पेल ऑफ गॉड टू द हेथेन भी ले जा रहे थे। पैरी को निम्नलिखित तीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक शक्तियाँ दी गई थी। पहला, जापानी अधिकारियों से दुर्घटनाग्रस्त जहाजों के अमेरिकी नाविकों के लिए मानवीय व्यवहार का वचन प्राप्त करना। दूसरा, रसद और ईंधन के लिए एक या उससे अधिक जापानी बंदरगाहों को खुलवाना। तीसरा, अमेरिकी व्यापार के लिए खरीद कर अथवा वस्तु विनिमय द्वारा कब्जा स्थापित कर एक या उससे अधिक जापानी बंदरगाहों के द्वारों का खोला जाना निश्चित करना। इसके अतिरिक्त, अगर पर्याप्त समय उपलब्ध हो तो पैरी को समुद्र की गहराई मापकर तथा सर्वेक्षणों के द्वारा जापान के तटीय क्षेत्रों की जांच पड़ताल करके महत्वपूर्ण आंकड़े भी एकत्र करने थे। यद्यपि उन्हें अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की खुली छूट दी गई थी, परंतु उनसे यह अपेक्षित था कि वे ऐसा आत्मरक्षा हेतु ही करेंगे। सन 1852 के अंतिम दिनों में कमोडोर पैरी ने प्रस्थान किया। उनके अधीन चार जहाजों का एक बेड़ा था। इनमें से दो युद्धपोत भाप चालित थे। यद्यपि उनका जहाजी बेड़ा उनके अनुमान से छोटा था, तथापि वे हर हाल में जापान पर अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रभाव डालना चाहते थे। इसलिए 8 जुलाई सन 1853 को एदो की खाड़ी में पहुंचने से पूर्व ही ओकिनावा की घटना में नाहा में उन्होंने आरोहणात्मक कार्रवाई की। यहाँ उन्होंने युरागा में लंगर डाला। तदुपरांत इन्होंने अत्यधिक तड़क भड़क के साथ अपना परिचय प्रमाण पत्र तथा अपने राष्ट्रपति का पत्र प्रस्तुत किया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ही देर बाद 8 से 9 जुलाई की मध्य रात्रि को सम्राट मेजी ने अपने संदेशवाहक कबूतर द्वारा अमेरिकी जहाजी बेड़े के आगमन की सूचना प्राप्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सम्राट को लिखे गए पत्र की पंक्तियाँ यूं थी। अगर सम्राट ने अपने प्राचीन कानूनों को बदलकर दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी तो यह दोनों देशों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। ऐसा कभी-कभी होता है कि तूफानी मौसम में हमारे जहाजों में से कोई जहाज नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमारे बदकिस्मत लोगों के साथ सहृदयता का व्यवहार किया जाए तथा उनके माल की रक्षा तब तक की जाए जब तक कि हम अपने जहाज वहां भेजकर उन्हें वहां से वापस न ले आए। हम इस मामले में अत्यंत चिंतित हैं। हम समझते हैं कि जापानी साम्राज्य में कोयले और रसद की अत्यधिक प्रचुरता है। हम यह चाहते हैं कि हमारे युद्धपोतों तथा अन्य जहाजों को जापानी बंदरगाहों पर रुकने दिया जाए और उन्हें कोयले, रसद और पानी की आपूर्ति की जाए। इन सब के लिए वे भुगतान करेंगे और यह भुगतान पैसों द्वारा किया जाएगा अथवा अन्य किसी भी रूप में जो सम्राट की प्रजा को मंजूर हो। इफ योर इम्पेरियल मैजेस्टी वेयर सो फार टू चेंज द एंशियंट लॉज एज टू अलाउ ए फ्री ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, इट वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू बोथ। इट समटाइम्स हैपेंस इन स्टॉर्मी वेदर डेट वन ऑफ आवर शिप्स इज रेक्ड, डेट आवर अनफॉर्चुनेट पीपल शुड बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड डेट दियर प्रॉपर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड टिल वी कैन सेंड ए वेसल एंड ब्रिंग देम अवे। वी आर वेरी मच इन अर्नेस्ट इन दिस। वी अंडरस्टैंड देयर इज ए ग्रेट एबंडेंस ऑफ कोल एंड प्रोविजन्स इन द एम्पायर ऑफ जापान। वी विश डेट आवर स्टीम शिप्स एंड अदर वेसल्स शुड बी अलाउड टू स्टॉप इन जापान एंड सप्लाई देम इन मनी और एनी थिंग एल्स योर इम्पेरियल मैजेस्टीज सब्जेक्ट्स में प्रेफर। सन 1854 में फरवरी महीने में कॉमोडोर पेरी हांगकांग और मकाओ से आधिकारिक उत्तर लेने के लिए लौटे। इस बार वे पहले से भी बड़ा बेड़ा लेकर आए जिसमें 9 जहाज थे और जिनमें 3 भाप चलित युद्धपोत भी सम्मिलित थे। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि बातचीत वहां से दूर कानागावा तटबंध में हो जो एदो क्षेत्र के समीप था। यहाँ कॉमोडोर पैरी ने जो एडमिरल की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे एक कुटेतक के रूप में अत्यधिक प्रवीणता का परिचय दिया। विदेशी संबंधों को लेकर जापान में कई दशकों से जो आंतरिक मतभेद थे तथा पश्चिमी खासकर ब्रिटेन के जहाजों के बार बार आगमन से जो भय उत्पन्न हुआ उनका लाभ भी कॉमोडोर पेरी को मिला। शीघ्र ही उन्होंने जापान के साथ कानागावा की संधि की जो 31 मार्च सन 1854 को संपन्न हुई। यह संधि शोगुन के नाम पर हुई थी क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को तोकुगावा की राजनीतिक व्यवस्था की जटिलताओं की जानकारी नहीं थी। इस संधि में मुख्यतः निम्नलिखित शर्तें थीं। पहला, दुर्घटनाग्रस्त जहाजों के नाविकों को आतिथ्य प्रदान करना। दूसरा, अमेरिका के लिए सर्वप्रिय राष्ट्र का प्रावधान किया गया। शिमोदा तथा हाकोदाते नामक 2 बंदरगाहों को ईंधन तथा आपूर्ति स्टेशनों के रूप में खोल दिया गया। चौथा, अमेरिका को 18 महीनों की समाप्ति के उपरांत एक दूतावास अधिकारी को शिमोदा में रखने का अधिकार दिया गया। कम से कम उस समय तो तोकुगावा अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों को सफलतापूर्वक टाल दिया। परंतु फिर भी कॉमोडोर पेरी इस शिष्टमंडल के परिणामों से अत्यंत खुश थे। आगे चलकर यह संधि शोगुनेत के लिए भारी बोझ बन गई जब 1854 तथा 1856 के दौरान ब्रिटेन, रूस तथा नीदरलैंड ने समझौते के लिए इस संधि का प्रयोग एक प्रतिमान के रूप में किया। कॉमोडोर पेरी के काले जहाजों के आगमन के बाद का 1.5 दशक तोकुगावा शोगुनेत की प्राचीन काले निरंकुश शक्तियों के ह्रास का काल था। यह तीव्र पतन तब आरंभ हुआ जब तोकुगावा नेताओं ने, जो कि ब्रह्म जगत के साथ व्यापार के लिए देश के द्वार खोलने का उत्तरदायित्व लेने में संकोच कर रहे थे, तोकुगावा संधि के परिणामों से उत्पन्न महत्वपूर्ण समस्या पर शाही दरबार तथा सामंतों से परामर्श मांगा। इस प्रकार से उन लोगों जो अब तक नीति निर्धारण के कार्य के बाहर रखे गए थे को इस मामले में अपने विचार प्रकट करने की अनुमति देकर वाकूपू ने एक नया उदाहरण स्थापित कर दिया जो एदो शासन को इसके राजनीतिक अंत तक ले गया।